पृष्ठ संख्या 25। प्लेटो के विज्ञानों पर हम 5 दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। पहला है ज्ञान की दृष्टि से, अर्थात इपिस्टेमोलॉजिकली। दूसरा स्वरूप की दृष्टि से, लॉजिकली। तीसरा उद्देश्य की दृष्टि से, अर्थात टेलियोलॉजिकली। चौथा सत्ता की दृष्टि से, ऑन्टोलॉजिकली। और पांचवा रहस्य की दृष्टि से, मिस्टिकली। पहला है ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान, अर्थात आइडियाज। ज्ञान के वास्तविक विषय, अर्थात ट्रू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों नित्य और अपरिणामी होने चाहिए। अनित्य और क्षणिक का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। गति, परिणाम, भेद और सापेक्षता का सदा अगतिशील, अपरिणामी, अद्वय और निरपेक्ष तत्व की ओर संकेत होता है, जो इनका अधिष्ठान है और जिसके बिना इनकी प्रतीति भी संभव नहीं। हेरेक्लाइट्स को भी कम से कम अपने परिणाम को ही नित्य मानना पड़ा है। प्रोटेगोरस को भी अपने संदेहवाद के विषय में कोई संदेह नहीं है। अनित्यवाद और संदेहवाद के आधार पर किसी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं। अनित्यवाद और संदेहवाद जब अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हैं तो ये अपना ही आत्मघात कर लेते हैं। इंद्रिय जगत में अनित्यता और संदेह का साम्राज्य अवश्य है, किंतु यह इंद्रिय जगत तक ही सीमित है। विज्ञान नित्य और असंदिग्ध है। विज्ञान स्वतः सिद्ध है। यदि विज्ञान का नित्यत्व और स्वतः सिद्धत्व स्वीकार नहीं किया जाए तो किसी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। हमारे ज्ञान में जो सार्वभौमता और निश्चयात्मकता है वह इंद्रिय जगत से न आकर विज्ञान जगत से आता है। अतः इंद्रिय जगत का विश्लेषण करने वाले विविध भौतिक विज्ञान शास्त्र भी विज्ञान के नित्यत्व और स्वतः सिद्धत्व के कारण ही अपने शास्त्रों में सार्वभौम और निश्चयात्मक नियमों की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस सत्य की, जिसको आगे चलकर कांट ने विशद किया, प्रतिष्ठा करने के कारण प्लेटो को वैज्ञानिक ज्ञान का प्रथम संस्थापक कहा जा सकता है। इंद्रिय जगत में हमें केवल अनित्य संवेदन प्राप्त होते हैं, जो हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बन सकते। पृष्ठ संख्या 26। विज्ञान ही ज्ञान का विषय बन सकता है। फीडो में कहा गया है कि इंद्रियों से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, सत्य की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि इंद्रिय जगत हमारे ज्ञान के लिए सर्वथा अनावश्यक है। फीडो में ही आगे चलकर कहा गया है कि इंद्रिय अनुभव के बिना हमें विज्ञानों का संस्मरण नहीं हो सकता। थीसिस में कांट के प्रसिद्ध सिद्धांत का कि ज्ञान के लिए विज्ञान और इंद्रिय अनुभव दोनों अपेक्षित हैं, पूर्व रूप स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। प्लेटो इंद्रिय जगत को असत नहीं कहते, वे इसे प्रतीति का विषय मानते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि विज्ञान के बिना हमें जगत का इंद्रिय अनुभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का वास्तविक विषय विज्ञान ही है। दूसरा है स्वरूप की दृष्टि से विज्ञान सामान्य अर्थात यूनिवर्सल क्लास कॉन्सेप्ट्स है। जगत के विविध विशेषों या व्यक्तियों की सत्ता सामान्यों के कारण ही है। सामान्य अपनी जात के विशेषों में अनुगत रहते हैं और उनको अन्य जात के विषयों से पृथक करते हैं। सामान्य का कार्य स्वजातीय विशेषों में एक रूपता लाना और उनका विजातीय विशेषों से भेद करना है। सामान्य अनेक विशेषों में अनुगत एकता है। सामान्य भेद से विशिष्ट अभेद है। सामान्य उत्पत्ति विनाश रहित अपरिणामी और नित्य है। ये हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं, इनकी वास्तविक सत्ता है। विशेष इन सामान्यों का अनुकरण करते हैं किंतु ठीक इन जैसे नहीं बन सकते। असली त्रिभुज हमारा विज्ञान है। हम जो त्रिभुज खींचते हैं वे इस असली त्रिभुज के अपूर्ण अनुकरण हैं। संसार के सुंदर या कल्याणकारी पदार्थ सौंदर्य और शिव तत्व के अनुकरण मात्र हैं। सामान्य विज्ञान जगत में रहते हैं, इंद्रिय जगत में इनकी छीड़ प्रतिक्रिया ही मिलती है। सामान्य विशेषों में अनुसूत रहता है, अतः यह कहा जा सकता है कि विशेष सामान्य में भाग लेते हैं। विशेष सामान्य के प्रतिबिंब या प्रतिरूप हैं। ये सामान्य दिव्य विज्ञान लोक में रहते हैं, जहाँ अमर आत्मा इनका साक्षात्कार करती है। जब आत्मा संसार में आकर शरीर में सीमित होती है तो इसे ये सामान्य याद आते हैं और यह स्मृति ही हमारे विज्ञान है जो इन सामान्यों के प्रतिबिंब हैं। अरिस्टोटल ने और उनके आधार पर अन्य दार्शनिकों ने प्लेटो के इस सामान्य का प्रबल खंडन किया है। उनके अनुसार प्लेटो ने इंद्रिय जगत को नितांत असत और विज्ञान जगत को इंद्रिय जगत से सर्वथा भिन्न और ऊपर मानकर भयंकर दार्शनिक अपराध किया है। व्यवहार और परमार्थ की यह खाई पाटी नहीं जा सकती। पृष्ठ संख्या 27। यह द्वैतवाद असंगत है। सामान्यों को विशेषों से भिन्न एक दूसरे ही दिव्य लोक का निवासी न मानकर उनको विशेषों में अनुसित ही मानना चाहिए। प्लेटो का विज्ञान जगत वस्तु जगत की निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है, किंतु एरिस्टोटल और उनके अनुयायियों के ये आक्षेप व्यर्थ और अनुचित हैं। प्लेटो ने परमार्थ को व्यवहार में अनुचित भी माना है और उससे ऊपर भी। सॉक्रेटिस के मत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत में भाग लेने वाला अंश और उसका प्रतिबिंब कहा है, किंतु उनका आशय व्यवहार और परमार्थ को न तो अलग अलग लोकों में रखने का है, न व्यवहार और परमार्थ के भेद को मिटा देने का है, और न व्यवहार को सर्वथा असत कहने का है। अंश और प्रतिबिंब से प्लेटो का तात्पर्य अभिव्यक्ति का है। यह उन्होंने पार्मेनाइडीज में स्पष्ट कर दिया है, जिस पर एरिस्टोटल और उनके अनुयायियों का ध्यान शायद नहीं गया है। विज्ञानों को प्लेटो ने दिक् कालातीत माना है, अतः उनके ऊपर और नीचे, बाहर और भीतर का वस्तुतः प्रश्न ही नहीं उठता। जब प्लेटो विज्ञानों को पार और ऊपर कहते हैं तो उनका अवश्य विज्ञानों की स्वतंत्र सत्ता से है, न कि उनके दूसरे लोक में रहने से। और फिर प्लेटो ने स्वयं बारंबार विज्ञानों को इंद्रिय जगत के विशेषों में अनुसित भी बताया है। तीसरा, उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान वे नित्य सांचे हैं जिनके अनुसार ईश्वर अर्थात डिमियर्ग इंद्रिय जगत के पदार्थों का निर्माण करते हैं। विज्ञान वे पूर्ण आदर्श अर्थात मूल बिंब या रूप हैं जिनके प्रतिबिंब या प्रतिरूप इंद्रिय जगत के पदार्थ हैं। सांसारिक पदार्थ इन आदर्शों के अनुरूप होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे इसमें पूर्ण सफल नहीं हो सकते। विश्व के समस्त पदार्थ अपूर्ण और अनित्य हैं। विश्व की सृष्टि इसीलिए हुई है कि इसके अपूर्ण और अनित्य पदार्थ पूर्ण आदर्शों को प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर विकसित हों। विश्व में विकास हो रहा है, किंतु यह विकास यंत्रवत नहीं है, सो उद्देश्य है। विज्ञान विश्व के पदार्थों में अनुसित है। विज्ञान विश्व के पदार्थों के वास्तविक स्वरूप हैं और समस्त सृष्टि अपने स्वरूप का लाभ करने के लिए विकसित हो रही है। विश्व में सामंजस्य और समन्वय है, एक रूपता है, और प्रत्येक पदार्थ भिन्न होते हुए भी इस अंतर्यामी अभेद को पाने के लिए प्रयत्नशील है। ईश्वर इस विश्व के निमित्त कारण हैं और विज्ञान इस विश्व के स्वरूप कारण हैं। विज्ञान रूपी नित्य बिंबों को आदर्श मानकर ईश्वर उनके अनुरूप सृष्टि के पदार्थों की रचना करते हैं। पृष्ठ संख्या 28। क्या ये नित्य बिंब ईश्वर के बाहर हैं? क्या ये नित्य बिंब सांसारिक पदार्थों के बाहर हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों है, क्योंकि प्लेटो ने विज्ञान को अंतर्यामी, इमानेंट और पर अर्थात ट्रांसेंडेंट दोनों माना है। प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है, प्लेटो ने ईश्वर और शिव तत्व में भेद माना है। ईश्वर सगुण है, शिव तत्व निर्गुण। ईश्वर अपर है, शिव तत्व पर। ईश्वर सृष्टि के निमित्त कारण और नियंता है। शिव तत्व ईश्वर का भी पिता है। समस्त विज्ञानों और सृष्टि में शिव तत्व अंतर्यामी है और इन सबसे पार अनिर्वचनीय भी है। समस्त ज्योति उसी से आती है, वह सृष्टि का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है। वह ईश्वर का भी ईश्वर और विज्ञानों का भी विज्ञान है। ईश्वर सृष्टि के निमित्त कारण है और विज्ञान सृष्टि के स्वरूप कारण है। ईश्वर विज्ञानों के अनुरूप सृष्टि करते हैं और इस अर्थ में ईश्वर विज्ञानों से बद्ध हैं और विज्ञान ईश्वर के बाहर है, किंतु ईश्वर और विज्ञान दोनों ही शिव तत्व की अभिव्यक्ति है। शिव तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है और ईश्वर तथा विज्ञान दोनों इसी के आभास हैं। इस दृष्टि से ईश्वर और विज्ञान भिन्न नहीं हैं और विज्ञानों को ईश्वर के बाहर नहीं माना जा सकता। द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है, नित्य विज्ञान सांसारिक पदार्थों में अनुसृत है और इस दृष्टि में उनके बाहर नहीं, किंतु सांसारिक पदार्थ नित्य विज्ञानों को सीमित नहीं कर सकते। नित्य विज्ञानों की सत्ता सांसारिक पदार्थों से स्वतंत्र है। इस दृष्टि से विज्ञान सांसारिक पदार्थों के बाहर है। नित्य विज्ञानों को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, यह हमारा कर्तव्य है। आत्मा अमर और दिव्य है और नित्य विज्ञान उसके स्वरूप हैं। अतः स्वरूप लाभ करना दार्शनिक का लक्ष्य होना चाहिए। इंद्रिय अनुभव इस स्वरूप को आवृत करता है, अतः इंद्रियों का दास होना उचित नहीं। जब जब प्लेटो ने इंद्रियों की निंदा की है, तब तब उनका लक्ष्य इंद्रिय जगत को असत सिद्ध करना न होकर इंद्रिय जगत के ऊपर विज्ञान जगत की ओर उठना रहा है। दुष्ट इंद्रियां उस अड़ियल और बदमाश घोड़े की तरह हैं जो रथ को गर्त में ले जाकर पटक देता है और वहां से सरकने का नाम नहीं लेता। साधु इंद्रियां उस उत्तम घोड़े के समान हैं जो रथ को सन्मार्ग पर ले जाता है। फ्रीड्स में कहा गया है कि शरीर रूपी रथ में साधु और दुष्ट दोनों घोड़े जुत रहे हैं। एक विज्ञानों की ओर जाता है और दूसरा इंद्रिय विषयों की ओर। आत्मा रूपी रथी का कर्तव्य दुष्ट घोड़े को रथ से निकाल देना नहीं, किंतु उसको साधु घोड़े के साथ साथ चलना है। पृष्ठ संख्या 29। इससे यह स्पष्ट है कि प्लेटो इंद्रिय जगत का नाश नहीं करना चाहते, वे उसकी प्रवृत्ति आत्मा विमुख करना चाहते हैं। नित्य विज्ञान भी जिसकी ज्योति से चमक रहे हैं, जो ईश्वर का भी पिता है, जो समस्त विश्व में अंतर्यामी है, जो पर और अनिर्वचनीय है, जो सृष्टि का परम आदर्श और लक्ष्य है, जिसकी ओर जगत निरंतर विकसित हो रहा है, उस विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शिव तत्व अर्थात आइडिया ऑफ द गॉड का निर्विकल्प साक्षात्कार ही मानव जीवन की चरम सार्थकता है।